लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो तानाशाही, निरंकुश सत्ता और यहाँ तक कि संकट में पड़े लोकतंत्रों के तहत मानव के मूलभूत अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा फ्रांसिस ने अपने बुधवारीय आमदर्शन समारोह के अवसर पर वैटिकन प्रेरितिक निवास के पुस्तकालय से सबों का अभिवादन करते हुए कहा,
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi parliamo di quella forma di preghiera che è la meditazione.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात। आज हम प्रार्थना के उस स्वरूप पर चर्चा करेंगे जो मनन चिंतन के रूप में की जाती है। एक ख्रिस्तीय के लिए मनन चिंतन करने का अर्थ है अर्थ की तलाश करना। इसका मतलब है प्रकाशना के एक बड़े पृष्ठ के सामने आना ताकि उसे अपना बना सके, उसे पूरी तरह अपना सके। और एक ख्रिस्तीय ईश वचन का स्वागत करने के बाद अपने अंदर बंद नहीं रह सकता, क्योंकि उस वचन को एक दूसरी किताब से मिलना है जिसको धर्म शिक्षा कहती है, जीवन की किताब। हर मनन चिंतन में हम यही करने की कोशिश करते हैं। मनन चिंतन के अभ्यास ने इस साल अपनी ओर विशेष ध्यान खींचा है। केवल ख्रिस्तीय नहीं है जो इसके बारे बातें करते हैं, विश्व के करीब सभी धर्म हैं जो मनन चिंतन का अभ्यास करते हैं, किंतु ऐसे लोगों के बीच भी यह एक व्यापक क्रिया है जो जीवन को धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं देखते। हम सभी को मनन चिंतन करने की जरूरत है, चिंतन करने, अपने आप को झांक कर देखने की। यह एक मानवीय गतिशीलता है। इससे भी बढ़कर पश्चिमी दुनिया में लोग इसकी खोज करते हैं, क्योंकि यह दैनिक तनाव एवं खालीपन के खिलाफ एक ऊंचा प्रतिरोध है। इस तरह हम यहाँ युवाओं एवं वयस्कों को ध्यान में बैठे मौन आंखें बंद किए हुए देख सकते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। हम हर समय दौड़ने के लिए नहीं बनाए गए हैं। हमारा एक आंतरिक जीवन है जिसे हमेशा अनदेखा किया जा सकता है। अतः मनन चिंतन हम सभी के लिए आवश्यक है। मनन चिंतन को इस तरह कहा जा सकता है कि यह रुकना है, रुकना और जीवन में सांस लेना है, कुछ देर के लिए रुक जाना है। हालांकि हम महसूस करते हैं इस शब्द को ख्रिस्तीय संदर्भ में स्वीकार करने की अपनी विशेषता है जिसको नहीं हटाया जाना चाहिए। मनन चिंतन एक आवश्यक मानवीय गतिविधि है। यह एक ऐसा आयाम है जिसे नहीं हटाया जाना चाहिए। एक महान दरवाजा जिससे होकर एक बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति की प्रार्थना आगे बढ़ती है। हम पुनः याद करते हैं कि यह यीशु ख्रिस्त है।
Per il cristiano, la meditazione entra dalla porta di Gesù Cristo.
ख्रिस्तियों के लिए मनन चिंतन यीशु ख्रिस्त के द्वार में प्रवेश करना है। मनन चिंतन का अभ्यास भी इसी रास्ते से आगे बढ़ता है। और एक ख्रिस्तीय जब प्रार्थना करता है, वह तब तक अपने आप को पूरी तरह नहीं देख पाता जब तक कि अपनी गहराई में नहीं उतरता है। यह वैध है, किंतु ख्रिस्तीय एक दूसरी चीज की खोज करते हैं। ख्रिस्तीय प्रार्थना सबसे पहले दूसरे व्यक्ति के साथ मुलाकात है, ईश्वर के साथ पारदर्शी मुलाकात। मनन चिंतन करना धर्म ग्रंथ के एक पाठ या एक शब्द से प्रेरित होकर अपने अंदर निवास करने वाले यीशु से मुलाकात करना है। मनन चिंतन शब्द पूरे इतिहास में अलग अलग अर्थ रहा है, यहाँ तक कि ख्रिस्तीयता के अंदर भी अलग अलग आध्यात्मिक अनुभव रहे हैं। फिर भी कुछ आम लकीर खींची जा सकती है और इसमें धर्म शिक्षा हमें मदद करती है। धर्म शिक्षा कहती है,
I metodi di meditazione sono tanti quanti maestri spirituali, ma un metodo non è che una guida.
मनन चिंतन के उतने ही तरीके हैं जितने आध्यात्मिक गुरु, किंतु ये तरीके सिर्फ मार्गदर्शक हैं। महत्वपूर्ण बात है पवित्र आत्मा के संचालन में एक ही रास्ते यीशु ख्रिस्त में आगे बढ़ना। यहाँ यात्रा में एक साथी पवित्र आत्मा के संकेत मिलता है जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। पवित्र आत्मा के बिना एक ख्रिस्तीय का मनन चिंतन करना संभव नहीं है। वही है जो हमें यीशु के साथ मुलाकात करने हेतु मार्गदर्शन देते हैं। यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा भेजूंगा, वह तुम्हें सिखलाएगा और समझाएगा। संत पापा ने कहा कि मनन चिंतन में भी सीखना और समझना यीशु ख्रिस्त के साथ मुलाकात करने हेतु आगे बढ़ने का एक मार्गदर्शन है। इस भांति ख्रिस्तीय चिंतन के कई रूप हैं, जिसमें हम कुछ को शांति में, दूसरे को वार्ता स्वरूप, कुछ में हम लोगों के बौद्धिक चिंतन को पाते, तो वहीं कुछ में हम प्रभावकारी ढंग से लोगों के भावनात्मक आयाम को देखते हैं। ये सभी अपने में महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं, जहाँ तक वे हमें अपने पूर्ण विश्वास को पुख्ता होने का एहसास दिलाते हैं। लोग केवल मन से प्रार्थना नहीं करते, बल्कि वे अपने पूरे व्यक्तित्व से प्रार्थना करते हैं। वे केवल अपनी भावनाओं से प्रार्थना नहीं करते हैं। संत पापा ने कहा,
Gli antichi solevano dire che l'organo della preghiera è il cuore.
अतीत में कहा जाता था कि प्रार्थना का केंद्र बिंदु हृदय है, और इसका जिक्र करते हुए कहा जाता था, प्रार्थना में संपूर्ण व्यक्ति संलग्न होता है, जहां वह अपने हृदय के केंद्र से ईश्वर के संग एक संबंध में प्रवेश करता है। प्रार्थना में मानव केवल कुछ संकायों का उपयोग नहीं करता है। इस भांति हमें इस बात को सदैव याद करने की जरूरत है, प्रार्थना करने का तरीका एक मार्ग है, अपने में एक लक्ष्य नहीं। हमारी प्रार्थना करने का कोई भी रूप, यदि यह ख्रिस्तीय है, तो यह ख्रिस्त का अनुसरण करना है, जो हमारे विश्वास के सार को व्यक्त करता है। चिंतन करने के तरीके हमें यीशु ख्रिस्त से मिलन हेतु अग्रसर करते हैं, लेकिन यदि आप केवल राह पर रुक जाते और केवल राह को देखते हैं, तो आप यीशु से कभी नहीं मिल पाएंगे। आप राह को ही ईश्वर का रूप बना लेंगे। राह के आगे यीशु हमारी प्रतीक्षा करते हैं और राह हमें यीशु के पास ले चलता है। कैथोलिक कलीसिया की धर्म शिक्षा हमें कहती है, चिंतन में हम विचारों, कल्पना, भावना और इच्छाओं को पाते हैं। कौशलों का यह संग्रहण आवश्यक है, जिसके द्वारा हम अपने विश्वास को गहरा बनाते हैं, जो हमारे हृदय परिवर्तन को प्रेरित करता है और ख्रिस्त के अनुसरण में हमारी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाता है। ख्रिस्तीय प्रार्थना इससे भी बढ़कर हमें यीशु ख्रिस्त के रहस्यों पर चिंतन करने में मदद करती है। संत पापा ने कहा,
Ecco dunque la grazia della preghiera cristiana. Cristo non è lontano, ma sempre in relazione con noi.
ख्रिस्तीय प्रार्थना अतः हमारे लिए कृपा है। यीशु ख्रिस्त हमसे दूर नहीं है, बल्कि वे सदैव हमसे जुड़े हैं। पृथ्वी पर यीशु का मानवीय जीवन प्रार्थना के माध्यम हमारे लिए समकालीन बनता है। हम पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं, जो हमारे दिशा निर्देशक हैं। हम पवित्र आत्मा के प्रति शुक्रगुजार हैं। यीशु के यर्दन नदी में बपतिस्मा ग्रहण करते समय हम भी उनके संग नदी के उस तट पर उपस्थित होते हैं। काना के विवाह भोज में हम भी उनके साथ सहभागी होते हैं, जहां यीशु ने दंपतियों की खुशी हेतु लोगों को सर्वोत्तम अंगूरी प्रदान की। यह पवित्र आत्मा है जो हमें यीशु ख्रिस्त के जीवन के इन रहस्यों में संयुक्त करते हैं, जिससे हम प्रार्थना में यीशु ख्रिस्त का अनुभव और अधिक गहराई से करते हुए उनके साथ जुड़े रहें। हम उनके हजारों चंगाई के चमत्कारों द्वारा अपने को आश्चर्यचकित होता पाते हैं। हम सुसमाचार के उन चमत्कारों पर चिंतन करते, जहां पवित्र आत्मा हमें वहां उपस्थित रहने को मदद करते हैं। जब हम प्रार्थना करते तो हम उस कोढ़ ग्रस्त व्यक्ति की भांति शुद्ध किए जाते हैं, अंधे बर्थलोमी की भांति अपनी दृष्टि को पुनः प्राप्त करते हैं, लाजरुस को हम कब्र से बाहर आता पाते हैं। संत पापा ने कहा कि हम भी अपनी प्रार्थना में चंगाई प्राप्त करने का अनुभव करते हैं। हम ख्रिस्तियों के लिए चिंतन करना यीशु से मिलना है और ऐसा करने के द्वारा हम अपने को खोज पाते हैं। ऐसा करना अपने में सीमित रहना नहीं है, बल्कि ऐसा करने के द्वारा हम यीशु के पास जाते और अपनी चंगाई प्राप्त करते हुए पुनर्जीवित उनकी कृपा से अपने को मजबूत बनाते हैं। इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सभों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
हे हमारे पिता सर्वव्यापी पिता, हे हमारे पिता, तू है पावन सर्व ज्ञानी, तेरा विस्तार सर्व स्वामी, तेरा अधिकार गगन अवनी, देना हमको रोजी रोटी, माफ करना सब नादानी।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने बुधवार के आम दर्शन समारोह के दौरान प्रार्थना पर धर्म शिक्षा माला को जारी रखा। उसी के मद्देनजर उन्होंने ट्वीट कर विश्वासियों को सुसमाचार पठन और मनन ध्यान करने हेतु प्रेरित किया। ट्वीट संदेश में संत पापा ने लिखा, सुसमाचार का कोई ऐसा पृष्ठ नहीं है जहां हमारे लिए कोई जगह नहीं है। हम ख्रिस्तियों के लिए मनन ध्यान करना प्रभु के संपर्क में आने का एक तरीका है और इस तरह, केवल इस तरह से हम खुद के बारे में जान सकते हैं। हैशटैग प्रार्थना आत्मदर्शन समारोह। उधर सियोल महाधर्म प्रांत के प्रवक्ता ने सूचित किया कि 27 अप्रैल को सियोल के सेवानिवृत्त महाधर्माध्यक्ष 89 वर्षीय कार्डिनल निकोलस चियोंग जिनसुक का निधन हो गया। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 2006 में संत पापा बेनेडिक्ट 16वें द्वारा उन्हें कार्डिनल बनाया गया था और 2012 तक 14 वर्षों के लिए दक्षिण कोरियाई राजधानी सियोल के महाधर्माध्यक्ष थे। जीवन भर उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि उनके देश में कैथोलिक विश्वासियों और पुरोहितों की संख्या बढ़ती रहे। कार्डिनल निकोलस चियोंग जिनसुक की मृत्यु के बाद कार्डिनल मंडल में कुल 223 कार्डिनल हैं, जिनमें से 126 मतदाता हैं और 97 गैर निर्वाचक हैं। उधर कारितास इंडोनेशिया ने चक्रवात सेरोजा से बचे हुए लोगों के लिए नए घरों के निर्माण की घोषणा की है। विदित हो कि 5 अप्रैल ईस्टर रविवार को पूर्वी नुसा तिंगारा प्रांत को चक्रवात सेरोजा ने प्रभावित किया था, जिसमें 181 लोग मारे गए और कई घायल हुए थे और हजारों घर ढह गए थे। कारितास इंडोनेशिया करीना के निदेशक फादर फ्रेडी राटे ने कहा, सरकार आधिकारिक तौर पर 5 मई को अपनी मानवीय सहायता को समाप्त कर देगी, लेकिन कारितास सहायता के कार्य को जारी रखेगी। फादर ने बताया कि लेरुंटुका धर्म प्रांतीय कारितास दानदाताओं के साथ मुख्य रूप से सबसे प्रभावित क्षेत्रों एडोनारा और लेम्बाटा के द्वीप में मकानों का निर्माण करेगी। करीना और अन्य दानदाताओं के साथ पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यक्रमों में वित्तीय मदद करेगी, जो अगले साल तक चलेगा। इंडोनेशिया में संत इजिदियो समुदाय भी मलाका जिले में चक्रवात से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। समन्वयक एवेलिन विनकारो ने कहा, हम अभी भी बाढ़ में सब कुछ खोए हुए लोगों के लिए भोजन और अन्य जरूरी वस्तुओं को वितरित करने में लगे हुए हैं। उधर संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाली वैश्विक टीकाकरण रणनीति सोमवार को शुरू की गई। 24 से 30 अप्रैल तक विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है। इस वर्ष के अवलोकन का विषय है, टीके हमें करीब लाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ और गावी वैक्सीन अलायंस इस सप्ताह के दौरान टीकाकरण पहुंच और सुधार के लिए नए सिरे से वैश्विक प्रतिबद्धता की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाल रहे हैं, क्योंकि कोविड 19 महामारी के कारण होने वाले व्यवधानों से टीकाकरण सेवाओं की क्रमिक स्वास्थ्य लाभ के बावजूद लाखों बच्चे घातक बीमारियों की चपेट में रहते हैं। यूनिसेफ के अनुसार 2020 की शुरुआत में महामारी के कारण होने वाली गड़बड़ियों से टीके की डिलीवरी 2019 में 2.29 बिलियन से गिरकर पिछले साल 2 बिलियन खुराक पर आ गई थी। यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक हेनरीटा फोर ने कहा, महामारी ने एक बुरी स्थिति को बदतर बना दिया जिससे लाखों बच्चे असमय चले गए हैं। अब सभी के मन में टीके सबसे आगे हैं। हमें इस ऊर्जा को बनाए रखना चाहिए ताकि हर बच्चे को खसरे, पोलियो और अन्य टीके मिल सके। हमारे पास बर्बाद करने का समय नहीं है। आधार खो जाने का मतलब है जान गंवाना, हेनरीटा ने कहा। महामारी से पहले भी चिंताजनक संकेत थे कि हम रोकथाम योग्य बाल बीमारी के खिलाफ लड़ाई में आधार खोना शुरू कर रहे हैं। 20 मिलियन बच्चे पहले से ही गंभीर टीकाकरण से वंचित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ और गावी विश्व के नेताओं और वैश्विक स्वास्थ्य एवं विकास समुदाय से अपील की है कि वे IA 2030 के लिए प्रतिबद्धताएं बनाएं और कमजोर एवं संघर्ष प्रभावित देशों के लिए विभिन्न विशिष्ट दृष्टिकोण के साथ मजबूत टीकाकरण प्रणालियों में निवेश करें। उधर जेसुइट फादर स्टेन स्वामी ने 26 अप्रैल को जेल की कोठरी में अपना 84वां जन्मदिन मनाया। उन्हें पिछले साल 8 अक्टूबर को रांची में गिरफ्तार किया गया था। उनका अपराध माओवादी विद्रोहियों के साथ कथित संबंध जो महाराष्ट्र राज्य में 2018 के दंगे के पीछे हैं। उसकी दलील, मैं दोषी नहीं हूँ। उसने अपनी गिरफ्तारी से पहले कहा था कि वह कभी भी भीमा कोरेगांव नहीं गया था जहां दंगे हुए थे। फादर स्टेन ने अपना जीवन झारखंड और अन्य जगहों के आदिवासी लोगों की सेवा करने, उनके अधिकारों के लिए खड़े होने और उनकी ओर से आवाज उठाने में बिताया। अब 200 दिन के बाद निर्दोष होने के बावजूद नाजुक स्वास्थ्य को देखते हुए जमानत की रिहाई के लिए कई अपील करने के बाद भी फादर स्टेन जेल में बंद हैं। उनके एक साथी जेसुइट सामाजिक कार्यकर्ता फादर सेड्रिक प्रकाश ने फादर स्टेन को एक खुला पत्र लिखा और उनके मिशन और सेवा को याद किया। फादर सेड्रिक ने कहा, हालांकि वे जेल में बंद हैं, फादर स्टेन अपने साथी कैदियों तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। उन्होंने कहा, आपने क्रूर और अमानवीय प्रणाली को अपने को तोड़ने की अनुमति नहीं दी है। इसके बजाय आप ऐसी सकारात्मकता और आशा के साथ हमें बताते हैं कि एक बंद पक्षी भी गा सकता है। उस अंतिम पंक्ति को मुंबई के येसु समाजियों ने धुन दिया जिन्होंने फादर स्टेन के अभिवादन में एक रैप वीडियो जारी किया था जिसका शीर्षक है अ केज बर्ड कैन स्टिल सिंग। सोमवार 26 अप्रैल को सुबह पवित्र मिस्सा बलिदान का आयोजन किया गया और शाम को प्रार्थना सभा की गई। उनके भाई इरुदया स्वामी ने अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर कहा, प्रिय फादर, हम आपके साथ हैं। फादर के सम्मान में रक्तदान अभियान और ट्विटर स्टॉर्म दिन भर की घटनाओं से भरा हुआ था। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।